నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కంద ఛఠాధ్యాయ శీర్షక్ నారద్ తథా వ్యాసదేవ్ కా సంవాద్ శ్లోక్ క్రమాంక్ 34. ఏతద్ధ్యాతురచిత్తానాం మాత్రా స్పర్శేచ్ఛయామహు భవసింధుప్లవో దృష్టో హరిచర్యానువర్ణనం. యహ మేరా నిజీ అనుభవ హై కి జో లోగ్ విషయ వస్తువో కే సంపర్క్ కి ఇచ్ఛా రఖనే కే కారణ్ సదైవ చింతాగ్రస్త్ రహతే హై వే భగవాన్ కి దివ్య లీలాఓ కే నిరంతర కీర్తన్ రూపీ ఉపయుక్త నౌకా పర్ చఢ్ కర్ अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं. तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जीव का लक्षण है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता. वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है. सामान्यतया भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के विषय में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं. चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतएव ऐसे कामोत्तेजक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती. उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं. यह माया है, अर्थात जो नहीं है, ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि नहीं प्रदान कर पाती उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है. अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्र तृप्ति के में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है. बात इतनी सी ही है कि विषय वस्तु को बदलना मात्र है. कोई न तो किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है. किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु परिवर्तित करनी होगी. उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए. वह सिनेमा सितारों के कार्यकलापों में सुरुचि न दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मी जी के साथ लीलाओं की ओर ध्यान दे. सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहैतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों के ही भांति अपनी कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं. वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद को प्राप्त करता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक व्यक्ति ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों के अनुसरण करने लगे। ओम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानांजन। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। ये शब्द नारद मुनि का है श्रील व्यास देव को। व्यास देव ने इस संसार के सारे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए चार वेद, उपनिषद, अलग अलग पुराण और अंततः वेदांत सूत्र की रचना की। ये सारे शास्त्रों की रचना करने के बावजूद भी उनके हृदय में तृप्ति नहीं, तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ, तृप्त नहीं थे वो। अब वो सोचने लगे कि क्यों ये ऐसा है। तब भगवान की इच्छा से नारद मुनि का वहां आना हुआ। जब एक व्यक्ति बड़ी तीव्रता से भगवान को जानने की इच्छा रखता है तो भगवान जो हर एक के हृदय में भी निवास करते हैं, ऐसे एक प्रामाणिक इच्छा को देखकर एक ऐसा इंतजाम करते हैं कि एक सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं और सद्गुरु की कृपा से हम भगवान को जान पाते हैं। इसीलिए सद्गुरु, कोई भी सद्गुरु है उनको हम कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति कहते हैं, कृष्ण कृपा के स्वरूप। तो भगवान की इच्छा से एक सद्गुरु प्राप्त होते हैं और सद्गुरु की कृपा से भगवान की अनुभूति होती है, भगवान को जान पाते हैं, भगवान की शरण जा पाते हैं। तो नारद मुनि आए, व्यास देव ने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि मैं ये सारे ग्रंथों की रचना किया हूं बद्ध जीवों का उद्धार के लिए, पर मेरे हृदय में ये असंतुष्टि है, इसका कारण क्या है। जैसे एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस दे देता है, एकदम सही डायग्नोसिस बीमारी का, इसी तरह से एक सद्गुरु नारद मुनि तुरंत व्यास देव जी के असंतुष्टि का कारण बता दिए और एक रूप से व्यास देव को डांटे भी। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासनम स्वभावरक्तस्य महान व्यतिक्रम। बोले धिक्कार है ये सारे शास्त्रों पर, ये सब शास्त्रों को बाजू में रखो और अब एक ऐसे शास्त्र की रचना करो जिनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम की कोई लेश मात्र भी स्पर्श ना हो। क्योंकि व्यासदेव अभी तक तुमने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें असली चीज तुमने नहीं दिया है। तुमने लोगों का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो इच्छा है उस इच्छा को तृप्त करने का अलग अलग तरीका बताया है, और बीच बीच में थोड़ा भक्ति ऊपर ऊपर छिटक दिया है बस। और जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा धर्म, धर्म यानी हमारा मूल स्वरूप जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता। सवई पुंसाम परो धर्मो, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतुकी। हम भक्ति कर रहे हैं पर कुछ अपेक्षा नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने की अपेक्षा के अलावा और कुछ दूसरी इच्छा नहीं। न धनम न जनम न सुंदरीं कविताम्बा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो अहेतुकी अप्रतिहता, निरंतर। ऐसा नहीं कि सोमवार से शनिवार किया और रविवार को अभी भक्ति से छुट्टी। कोई अगर व्यक्ति अपने पत्नी से कहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं पर रविवार को मुझे छुट्टी दो, सोमवार से शनिवार प्रेम करूंगा रविवार को इसमें से छुट्टी चाहिए मुझे, इस तरह से ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ रविवार को आपके पास आऊंगा ताकि मेरा सोमवार से शाम शनिवार का बिजनेस अच्छा चले। कुछ नहीं आने से अच्छा है कम से कम उसलिए आए। पर अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो जिगुप्सितम, धिक्कार है ऐसे शास्त्रों पर, फेंको इसको। शास्त्र, महाभारत, चार वेद, बताए निकालो सब। अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो। क्यों? स्वभावरक्तस्य, स्वाभाविक रूप से जीव अर्थ और काम वासना रखता है, भोक्ता और प्रभु, भोगने की इच्छा और प्रभुत्व जमाने की इच्छा के कारण ही हम यहां आए हुए हैं इस संसार में। क्यों अर्थ कमाना चाहता है? क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास प्रभुत्व जमा सकता है वो, और क्यों प्रभु? और भोग करना चाहता है। हिरण्य कशिपु, हिरण्य यानी सोना और कशिपु यानी मुलायम गद्दा। तो हर एक व्यक्ति को यही चाहिए, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, जो आसक्त हैं, भले वो आध्यात्मिक जीवन में आए पर फिर भी इच्छा है कि भगवान की भक्ति करके खूब भोग करूंगा, खूब ऐश्वर्य कमाऊंगा। धनम और सुंदरीम कविताम, प्रमाणित तरह से करूंगा, भगवान से मांगूंगा। तो हर एक व्यक्ति को यह करने की इच्छा है और तुमने शास्त्र के आधार पर यह करने को छूट दे दिया है, और यह स्वभाव होने के कारण वो सिर्फ छूट को लेंगे और जो विधि है उसको नहीं स्वीकार करेंगे, असली चीज है उसको छोड़ देंगे, और ये चीजों को सिर्फ छूट दिया है ना, वो छूट को ही ले लेंगे बस। और इस तरह से नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि किस प्रकार से व्यासदेव आपके इस ग्रंथों के कारण तथाकथित ब्राह्मण लोग इस ग्रंथों को लेकर मंदिरों को कतल खाना बना देंगे, और तब बुद्ध का अवतार होगा। निंदस यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। निंदस यज्ञ विधे, अहा श्रुति जातम, यज्ञ की विधि को निंदा करते हुए कहां से श्रुति उत्पन्न होती है, श्रुति जातम शास्त्रों में, सदय हृदय दर्शित पशु घातम, पशु की हत्या होगी यज्ञ के नाम पे, केशव धृत बुद्ध शरीरम। तो इस तरह से उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी की, देखो ऐसा तुम छूट दे रहे हो, हां दारू पी सकते हो, ऐसा सौत्रामणि यज्ञ करके थोड़ा दारू पीना बस, मांस खा सकते हो, काली के सामने बलि लगा के, लोके व्यवया आमिष मध्य सेवा नित्य से जंतुर नहीं तत्र चोतना, लोके व्यवया आमिष मध्य सेवा, पर स्त्री संबंध, मांस खाना और शराब पीना ये स्वाभाविक है, स्वभाव रक्तस्य, जो मांस और खून का शरीर बना हुआ है, इस शरीर से जो आसक्त है, शरीर को खुद समझता है, स्वाभाविक रूप से ये तीन चीज करेगा ही। जिस प्रकार पानी को छोड़ दो तो नीचे 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 आता जाता है अपने आप, इस तरीके से अगर नियंत्रण नहीं किया जाए इंद्रियों को शास्त्र के आधार पर, तो धीरे 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 व्यक्ति ऐसी नीच स्थिति में जाएगा कि सब चीज करने लगेगा धर्म के नाम पर। अभी एक ऐसा ग्रंथ की रचना करो जिसमें शुद्ध चीज हो और धर्मार्थ काम मोक्ष का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं हो, और वो ग्रंथ की रचना थी श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल पुराण। भागवत जो है वैदिक ग्रंथों का राजा है। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक महान आचार्य हुए, वो कहते हैं पूरे विश्व के जितने सारे ग्रंथालय हैं, जितने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिलॉसफी ज्योग्राफी ये वो जो जितना भी सारे विश्व के जितने सारे ग्रंथालय हैं उसमें जितने सारे ग्रंथ हैं सब जलकर राख हो जाए तो भी दुनिया को कोई नुकसान नहीं अगर भागवतम है तो, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य है समस्याओं का हल। जिसको ज्ञान नहीं है वो समस्या आती है तो हल नहीं कर पाएगा। किसी को बीमारी है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, उसको ज्ञान नहीं कि क्यों हो रहा है, बच्चा है रोता रहता है, पर जिसको ज्ञान है तुरंत उसको समझता है ठीक कर पाता है। कभी कभी स्विच लगाने जाते हैं करंट लगता है, अरे बाप रे, तो स्विच के पास ही नहीं जाने का भी क्योंकि करंट लगता है, और जो इलेक्ट्रिशियन उसको ज्ञान है इसीलिए बोलता है अरे ऐसा नहीं तो ग्राउंडिंग हो गया उसको ठीक करो, हाँ बस हो गया। तो ज्ञान है तो समस्या का हल होता है, जिसको ज्ञान नहीं है समस्या का हल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मृत्यु बुढ़ापा बीमारी तापत्रय, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता बीमारी, कोई नहीं चाहता मृत्यु, पर थोपी जा रही है। पर निगमक अल्पतरोर गलितम फलम, ये जो शास्त्र है भागवत है, तापत्रयो उन्मूलनम, जड़ से निकाल कर इस सारे चीजों को दूर करता है, सारी समस्याओं का जड़ कारण मूल कारण को उठा के फेंक देता है। तो श्रीमद् भागवतम की रचना करो, और ये श्रीमद् भागवतम न केवल परमहंस संहिता परमहंसों के लिए है, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति जितना से जितना बद्ध जीव हो, अगर नित्यम भागवत सेवया, अगर भागवत का श्रवण करे ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, तो निश्चित रूप से वो भी, यहां जैसे नारद मुनि कह रहे हैं, ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क इच्छा रखने के कारण सदैव चिंता ग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। और नारद मुनि व्यास देव जी को समझाने के लिए अपना खुद का जीवन बताते हैं कि देखो व्यास, पिछले जन्म में मैं कौन था, मैं एक दासी का पुत्र था, ऐसी तुच्छ स्थिति में था मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन है। एक नौकरानी का पुत्र था जो एक आश्रम में काम करती थी, और उस स्थिति से लेकर उसी जन्म में मैं भगवान का दिव्य नित्य पार्षद नारद बन गया, उसी जन्म में, एक जन्म में। जीवन एक यात्रा है, एक लंबा सफर है, प्रयाण है। हर एक का जीवन, जैसा कभी हम सोचते एक गाड़ी लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक प्रयाण है, एक यात्रा है, लंबी सफर, एक लंबा सफर। इसी तरह से ये जीवन भी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लंबा सफर है। अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, कहीं सफर, एक लंबा कहीं यात्रा पे निकले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है एक सफर में निकलते वक्त? अगर आप किससे पूछोगे कि वो लंबे सफर पे जा रहा है, तो आप सबसे पहला प्रश्न क्या पूछोगे? कहां जा रहे हो, है कि नहीं? मैं थोड़ा जा रहा हूं, किधर जा रहे हो? सबसे पहला गंतव्य स्थान कौन सा है? क्योंकि बिना गंतव्य स्थान के आप अगर गाड़ी चला रहे हो और पूछते हो किसी से दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, अगर वो बिना पूछे बोलेगा कि आप कहां जा रहे हो, इसका मतलब धोखेबाज है या वो भी मूर्ख है। वो कैसा बोल सकता है कि दाएं जाओ? किधर जा रहे हो भाई, किधर जाना है आपको? तब तो मैं बताऊंगा कि दाएं जाओ कि बाएं जाओ। तो जीवन का लक्ष्य, जीवन एक लंबी यात्रा है, लंबा सफर है, और सबसे प्रमुख चीज है यह जानना कि हमारा लक्ष्य क्या है। दुर्भाग्यवश 99.99 लोगों को यह नहीं मालूम कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती के वो महामूर्ख की कहानी कहते थे, जिसको यह नहीं मालूम, मृत्यु के समय उस मूर्ख ने, तथाकथित मूर्ख ने उस राजा से पूछा, तुमने तो मुझे मूर्ख कहा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, हे राजन, मृत्यु का समय आ गया है, अभी तुम अनसित सांस ले रहे हो, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो क्या मालूम? रहूंगा कि नहीं मृत्यु के बाद, वो भी नहीं मालूम मुझे। बोले सामान वामान बांध दूं? बोले क्या सामान, यहां तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, थोड़ी साथ में ले जा सकता हूं, जिस तरह से आए उसी तरह से जाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम बता के जाओ प्रभु कब लौटोगे। ले लौट रहा, आज तक इस यात्रा से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो इस तरह से किसी को गंतव्य स्थान क्या है नहीं मालूम। अगर गंतव्य स्थान नहीं मालूम तो आप क्या कर रहे हो? घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, वापस उसी जगह लौटोगे। ब्रह्मांड भ्रमिते, ऐसा भ्रमण कर रहे हैं, जैसे अभी शालिनी पैलेस के सामने लंकारा में एक ऐसा वो लगा, क्या बोलते हैं, जायंट व्हील, ऐसा कभी ऐसा घूमने वाला, कोई ऐसा घूमने वाला, तो उसमें कभी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुशी, कभी गम। ऊपर जाते स्वर्ग लोग, हाँ बहुत अच्छा लगता है बच्चों, फिर जब नीचे आता है तो पेट के पास अजीब लगता है, रोते रहते बच्चे। पैसा दे के हंसना और बाकी समय रोना, आधा समय हंसना आधा कभी रोना, कभी खुशी ज्यादातर गम। तो ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को लक्ष्य ही नहीं मालूम। तो सबसे पहले ही जानना कि लक्ष्य क्या है, और वो है वैकुंठ कुलोक वृंदावन धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः। ऐसे जगह जहां सूरज, चंद्रमा, ट्यूबलाइट, अग्नि, किसी की जरूरत नहीं है, वहां सब कुछ प्रकाशमान है, न वहां मृत्यु है न बुढ़ापा है, न बीमारी है। वो धाम, वो हमारा लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति का वही लक्ष्य है। दुर्भाग्यवश किसी को यह मालूम ही नहीं, पर भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे। कहां भाग रहे? सब भाग रहे, इसलिए भाई भी भाग रहा हूं बस। ये मेंढी शीप, मेंढी मेंढी ना, उन लोगों को देखा आपने? सब भागते रहते बस। हजार मेंढी एक साथ जाते हैं, एक लकड़ी आप रखो, एक कूदेगा, दूसरा कूदेगा, फिर लकड़ी हटा दो, चौथा कूदेगा, पांचवा भी कूदेगा। क्यों कूदा? सामने वाला कूद रहा है, इसलिए मैं भी कूदू। ऐसी परिस्थिति है हमारी। दो पैर वाले मेंढी हम लोग। सिर्फ भाग रहे। क्यों? सब भाग रहे, सब कमा रहे, हमको भी कमाना है। सबको पदवी चाहिए, मेरे को भी पदवी चाहिए। सबके पास गाड़ी, इसीलिए मेरे पास। तुमको क्यों गाड़ी? तुम तो बगल में ही रहता है, तुम्हारा घर भी बगल में, ऑफिस बगल में। गाड़ी के बिना लोग सब गाड़ी को इकट्ठा कर रहे, मेरे पास होना चाहिए। सब भाग रहे हैं, इसीलिए हम भी भाग रहे। किसी को लक्ष्य नहीं मालूम। गीता बताता है लक्ष्य क्या है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस तमाहुः परमां गतिम। परमां गतिम, परम गति क्या है वो भगवान ने बताया। और दूसरी बात यह है, आप अब हो कहां? क्योंकि कहां हो उसके ऊपर निर्भर करता है, कहां जाना है, किस दिशा में मुड़ना है। और वो भी शास्त्र बतलाता है। अब हम हैं कहां और जाना कहां है, ये लंबी यात्रा है। बद्ध अवस्था में है, काम क्रोध लोभ मोह से बंधे हुए हैं, और जाना कहां है? भगवत धाम। मैथुन्य आगार, ये जो वहां से हमको जाना है, प्रेम सागर, प्रेम का जो सागर है। अब हैं हम लोग दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय और अशाश्वत। जाना कहां है? सुखालयम शाश्वतम। पदम पदम विपदम, ऐसा जगह जहां पद पद में विपद है। और जाना कहां है? आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, जहां हर क्षण आनंद की सागर बढ़ती रहती है, ऐसी जगह हमको जाना है। दो रास्ता है, मृत्यु संसार वर्तमानी, और दूसरा है अपवर्ग वर्तमानी। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमानी। वर्तमानी मतलब रास्ता, मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्यु संसार की ओर जा रहे हैं, और उसका रॉयल रोड हाईवे एक्सप्रेस है वो, तीन लेन वाला एक्सप्रेस हाईवे है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो मृत्यु संसार वर्तमानी, और वहां से जाना है हमको अपवर्ग वर्तमानी, मुक्ति की ओर। वो कौन सा? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद आशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो ये भौतिक विज्ञान जो है शंका से शुरू होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान श्रद्धा से शुरू होता है। भौतिक विज्ञान में यू स्टार्ट विथ ए डाउट, और आध्यात्मिक में यू स्टार्ट विथ फेथ, श्रद्धा। आदौ श्रद्धा कि नहीं, इस दिशा में जाएंगे और हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये यात्रा है, लंबी यात्रा, और उस यात्रा की ओर अभी बढ़ना है हमें। और ये कैसी यात्रा है? ये बाहर से दौड़ने वाली, गाड़ी में बैठकर जाने वाली यात्रा नहीं, ये अंदर जाने की यात्रा है। हम अपने आप को क्या समझते हैं वहां से लेकर हम क्या हैं वहां तक जाना है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगता हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, वहां से हमको हम क्या हैं, गोपी भरतुर पद कमले और दास दास अनुदास। तो भोक्ता बनने से दासत्व की ओर लंबी यात्रा है। पूर्ण रूप से अपना मैं, वहां से जनस्य मोहोयम अहम ममेति, वहां से मन मना भव मद भक्तो, हमेशा अपने बारे में सोचने वाले, वहां से हमको हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने वाले, अपनी प्रसन्नता अपना सुख अपना आनंद को सोचने वाले से लेकर ऐसी जगह जाना है जहां हर एक व्यक्ति सिर्फ कृष्ण के बारे में, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण का आनंद, कृष्ण की तृप्ति, इसके बारे में सोचता है। ये अंदरूनी यात्रा है, अंदर जाने की यात्रा है। और ये यात्रा का मतलब है परिवर्तन, एकदम जड़ से अंदर से परिवर्तन होना। तो आप एक जगह बैठे बैठे आप इस यात्रा में बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही तेज से प्रगति कर सकते हो, अगर लक्ष्य साफ है। अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो पूरे दुनिया भ्रमण कर रहे हो, पर जहां हो वहीं टिके रहोगे, वहीं लटके रहोगे। ये यात्रा बड़ा अजीब है। मैं 2 हफ्ते पहले लंदन में था, वहां 2 प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा, जो राधा गोकुलानंद भक्तिवेदांत मैनर जो जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी के लिए उपहार दिया था, बहुत सुंदर 17 एकड़ का बहुत सुंदर बंगला और जमीन गार्डन इत्यादि। वहां 2 भक्त हैं, एक माता जी है 70-72 साल की, और दूसरे एक प्रभु जी हैं, वो भी शायद 60 के करीब होंगे। पिछले 35 साल से लगातार हर रोज सेवा कर रहे हैं, वो कभी उस कंपाउंड से आज तक बाहर नहीं गए। उनको भक्तों ने वहां बोला कि आप इतने समय से सेवा कर रहे हो, आपके लिए हम वृंदावन में, भारत में वृंदावन में आपके लिए घर बना के देंगे, आप अपना अंतिम दिन वहां रहो। बोले नहीं, प्रभुपाद जी ने मुझे सेवा दिया है, ये सेवा ही मेरा सब कुछ है, बस और वहां जाके करूंगा क्या मैं वृंदावन, यही मेरा सब कुछ है। तो वो एक जगह से हिले नहीं है पिछले 35 साल से, पर शायद मन की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर जिनको लक्ष्य नहीं मालूम, पूरे संसार में शायद 50 बार भ्रमण करके आ गए हो, पर वहीं के वहीं हैं, क्योंकि लक्ष्य नहीं मालूम, घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। तो ये जो प्रयाण है, ये लंबा सफर है, ये जो यात्रा है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर जाना है, परिवर्तन होना है, हमारे चेतना में परिवर्तन होना, फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जनस्य मोहो या अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और शरीर से जुड़ा सब कुछ अपना है, उस भावना से कृष्ण भावना भावित होना। ये बीमारी इतना फैल गया है लोगों के हृदय में, कृष्ण से जो संबंध है छूट गया है, किसी को नहीं मालूम उनका संबंध। एक भक्त बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आप किसी से प्रश्न पूछिए कि एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है, तो सिर्फ पहला नाम बोलते हैं, रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश। ये बीमारी का लक्षण है। आप बोलेंगे बीमारी लक्षण, अरे बेचारा नाम बताया, क्या बीमारी का लक्षण है। पहले अगर किसी से नाम पूछो तो आई डोंट, यहां पता नहीं महाराष्ट्र में कैसा है, दक्षिण भारत में सबका 3 नाम होता है, एक खुद का नाम, एक पिताजी का नाम और एक गांव का नाम। एटलीस्ट मेरा नाम ऐसा है, पासपोर्ट बहुत लंबा है बेचारा, पढ़ने को नहीं होता लोगों को, बाहर के लोगों को। एक तो मैं जिस गांव से आया हूं, गांव का नाम, दूसरा नाम मेरे पिताजी का नाम और तीसरा मेरा नाम। अगर नाम बोलोगे तो तुरंत पता चल जाएगा इसके बाप का नाम क्या है और ये कौन से गांव का है, पूरा एड्रेस दे दिया आपने नाम बोल के। पर आज के दुनिया में किसी से नाम पूछो तो सिर्फ पहला नाम, मतलब ये दिखाता है कि संबंध नहीं जानते किसी के। एक कलयुग का लक्षण है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसीलिए जब दीक्षा दी जाती है तो हमको एक नाम दिया जाता है, राधा गोपीनाथ दास। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे हंसदूत प्रभु, तो एक बार प्रभुपाद जी सब भक्तों को अपना नाम का मतलब बता रहे थे, गर्ग मुनि का मतलब ये, ब्रह्मानंद का मतलब ए, तो इस तरह से वो हंसदूत प्रभु वहां बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हंसदूत का मतलब क्या, तो प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं, दूसरे लोगों पे चले गए, तो बेचारे क्या पूछे, फिर चुप हो गया। फिर अगले बार कई महीनों के बाद फिर से प्रभुपाद जी सबको अपना नाम के मतलब बता रहे थे, तो बोले और एक मौका मिला अभी पूछूंगा। तो हंसदूत प्रभु ने पूछा, प्रभुपाद हंसदूत कौन है? प्रभुपाद ने बोला तुम। और फिर प्रभुपाद ने समझाया, बोले वो हंसदूत की चिंता मत करो, दूसरे नाम की चिंता करो, दास वो मत भूलना, भले हंसदूत भूल जाओ, दास हो वो मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारा मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, बोले इसको मत भूलना। तो ये दूसरा नाम जो दिया जाता है हमको, हर एक व्यक्ति को ये नाम दिया जाता है दास। इसीलिए आप अगर इस्कॉन वाले किसी भक्त से नाम पूछोगे तो पूरा नाम ठीक से लिख के रखना। एक बार ट्रेन में हमको एक भक्त मिले थे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला राधा गोपीनाथ दास। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा आपसे मिलूंगा। मैं बोला ठीक से नाम लिख लो, बोला नहीं समझ गया मैं आ जाऊंगा। तो एक महीने के बाद वो आया और रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोला कि मिस्टर दास से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट से बोला, देखो यहां 103 दास रहते हैं, कौन से दास से मिलना है आपको? उसने बोला सब दास है यहां। बोले सबके सब दास है इधर। फिर बोला लंबे हैं। वो बोले कम से कम वो तो 53 लोग हैं। बोला चश्मा पहनते वो तो 23 लोग हैं। फिर ऐसे करते कम करते 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 बाद में शायद आया पहुंचा किसी तरह से। नहीं, तो दूसरा नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, दास ये मत भूलो, ये संबंध दिखाता है। पर दुर्भाग्यवश हम अपना जब संबंध भूल जाते भगवान के साथ, तो अपने पिता के साथ जो हमारा रिश्ता है वो भूल गए हैं, इसीलिए हम भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और ये हमें संबंध ज्ञान देता है। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु को है, वेदों में तीन वस्तु है, भगवान के साथ तुम्हारा संबंध, उस संबंध को पुनर्स्थापित कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कृष्ण प्रेम, प्रेम के द्वारा, प्रेमापमार्थो महान, वो प्रेम की हम खोज, काम से लेकर काम, ये जो है ये संसार जो है द लैंड ऑफ काम, वहां से लेकर वी आर ट्रेवलिंग टू द लैंड ऑफ प्रेम, बहुत लंबा रास्ता है पर अंदर का रास्ता है। तो इस तरह से और दूसरा चीज क्या है इस यात्रा में, हम आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी हमारे अंदर एक बचपना सा होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, उनको बोलो कि हम लोग अभी गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो उनको लगता है सब जगह आइसक्रीम खाते रहेंगे, चॉकलेट का घर होगा उसके अंदर घुसेंगे। बच्चों को जो यात्रा है मतलब लंबा सफर है वो नहीं समझता, उनको लगता है कि सब ऐसे ही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और समझ में आता है कि यह लंबा यात्रा है, तो आदमी जब अंदर आता है सोचता है कि अभी तो हम हरे कृष्ण जप करते हैं, अभी तो तिलक लगाते हैं, कंठी माला भी लगाते हैं, अभी सब कुछ स्मूथ चलेगा, मेरी पत्नी एकदम ठीक ठाक सुनेगी मेरी बात, मेरे बच्चे मेरा पूरे आज्ञा का पालन करेंगे, स्वास्थ्य मेरा हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिस चीज में हाथ लगाऊंगा सोना हो जाएगा, रात को बारिश होगी सिर्फ पैसे गिरेंगे, सुबह जाके इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, इस तरह से मेरा जीवन चलता रहेगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका, जय जगदीश हरे। तो हमको लगता है कि यात्रा भी बड़ा स्मूथ रहेगा, पर यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। हमारे प्रभु जी एक सेमिनार दिए, बोले डोंट थिंक दिस इज लॉलीपॉप लैंड, बस अच्छा चलता रहेगा सब स्मूथ। अभी भक्ति में आ गए ना, हरे कृष्ण जब करे एकदम स्मूथ चलेगा, नहीं। ये यात्रा में परीक्षाएं, ये लंबी यात्रा है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, पहला तो पहला रास्ता अच्छा दिखता है, एकदम स्मूथ लगता है, फर्स्ट क्लास। तथा साधु संग भजन क्रिया, फिर घाट सेक्शन आता है, अनर्थ निवृत्ति, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी वो सर चकर आ रहा है, कभी ऊपर ऐसा जा रहा है, घूम रहा है, फिर लगता है गिर जाऊंगा, फिर अच्छा से घुमा फिरा के लाना पड़ता है, फिर निष्ठा रुचि भाव बहुत लंबा। पर ये जो अनर्थ निवृत्ति का जो घाट सेक्शन है बहुत लंबा है, कभी कभी थक जाता आदमी, बोला कहां क्यों शुरू कर दिया है, अब पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे भी अभी एक सिंगल फाइल रास्ता है, एक ही रास्ता है, सीधा छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो तो अपने आप चला जाएगा, नीचे चला जाओगे बस। तो इस तरह से बहुत तपस्या है, शुद्धिकरण होती है, पर हमें जानना चाहिए ये शुद्धिकरण तैयारी कर रहे हैं उस धाम के लिए, उस जगह के लिए, वृंदावन के लिए। क्या वृंदावन में जीवन ऐसा है सब एकदम फर्स्ट क्लास है? नहीं, हमेशा कोई ना कोई एक असुर आक्रमण कर रहा है, ब्रजवासी हमेशा चिंतित रहते हैं, किस लिए? अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के एक पसीने को बहाने के रोकने के लिए लाखों बार मरने के लिए तैयार है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के एक क्षण के सरदर्द को कम करने के लिए अनंत काल के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। यह वृंदावन धाम हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हर एक व्यक्ति अपना जान देने के लिए तैयार है कृष्ण को एक क्षण के लिए प्रसन्न करने के लिए। जाना चाहते हैं? सोच लो, नहीं तो अभी गाड़ी मोड़ो, बाहर निकलो, अपना गाड़ी लेके वापस चले जाओ। हरि बोल। जो धाम आप जा रहे हैं वो आनंद का सागर है, पर ये आनंद का स्वरूप अलग है। वो आनंद सिर्फ कृष्ण को आनंद देने में है, अपना आनंद नहीं, अपनी आनंद की इच्छा नहीं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवत। ऐसे ऐसे प्रेम से भगवान बिक जाते हैं। तो बिजनेस के लिए नहीं आते हैं, भगवान ये करा दो तो ये मिलेगा, चेक मिल जाएगा आपको, ठीक है, ना करने से अच्छा है ऐसी भक्ति। पर ये शुद्ध भक्ति है, ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का अंतिम ध्येय है। अगर नहीं तो फिर यही रहोगे बस। और अंत में एक तो लक्ष्य को जानना जरूरी है, और जानना चाहिए कि ये यात्रा इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, निश्चय होनी चाहिए इसी रास्ते पे चलेंगे, इससे पीछे नहीं मुड़ेंगे, भले जितना भी तकलीफ आ जाए पूरे उत्साह के साथ चलेंगे। धैर्यात धीरज रखेंगे, अपना धीरज नहीं खो बैठेंगे, थोड़ा भी समस्या आ गया अरे ऐसा कैसा, मालूम है कि ये जो भी है उस धाम के लिए तैयारी है ये सब। क्या इतने में हिल गए, सॉरी इतने में आप तकलीफ हो गए, तो फिर वहां कैसे आओगे आप? वो आपके वो जगह आपके लिए नहीं है, पीछे मुड़ जाओ। और दूसरा चीज है, प्रथम चीज है लक्ष्य को जानना, दूसरा चीज है उस यात्रा की पूरी तैयारी करना। कैसे? नारद मुनि के जीवन का अध्ययन करो। नारद मुनि का जीवन जो है एक आदर्श उदाहरण है भक्त का। क्या क्या तकलीफें उन्होंने उठाई, क्या तकलीफें उनके जीवन में आई, किस तरह से उनको उसने झेला पर अपना दृढ़ता नहीं खोया। इसीलिए हम ऐसे महात्माओं का जीवन जीवनी जो है उसका बड़े ध्यान, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, शिल प्रभुपाद, सारे आचार्यगण, उनके आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस, इन आचार्यों के जीवनी के ऊपर बड़े ध्यान से गौर करना, उनकी जीवन कैसे थी, उनकी शिक्षा क्या थी जो उन्होंने अपने जीवन से सिखाया, तब हमें स्फूर्ति मिलेगी, उत्साह रहेगा, धीरज रख पाएंगे। और अंत में इस यात्रा में अगर अंत तक पहुंचना है तो एक महत्वपूर्ण बात है अपने जीवन को बैलेंस रखना। बैलेंस मतलब इधर भी नहीं, अगर बैलेंस खो, अगर गाड़ी चला रहा है व्यक्ति बैलेंस खो बैठता है तो क्या होगा, गाड़ी का बैलेंस खो बैठता है या दारू ज्यादा दारू पी के अपना बैलेंस खो बैठता है तो क्या होता है, लुढ़क जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कभी नहीं पहुंच पाता है वो। थोड़ा सतर्क नहीं रहता है बैलेंस खो बैठेगा। तो बैलेंस रखना। एक बार एक राजा थे, उस राजा के दो मित्र थे। एक बार दोनों मित्र कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए, करोड़ों का माल था, पकड़े गए वो लोग, और दोनों मित्रों को राजा के पास लाया गया। राजा ने बोला, अरे ये तो मेरे मित्र हैं, मैं इसको सजा देने की इच्छा नहीं है, पर सजा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि गलत काम किए इन लोगों ने। तो राजा ने एक योजना बनाई, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुत बड़े माले पे, मतलब क्या बोलते हैं, इमारत पे, एक इमारत यहां और थोड़े दूर पर सड़क के उस पार एक दूसरा इमारत था, समझ लीजिए 150 माले का। तो एक इमारत से दूसरे इमारत पर उसने रस्सी बांध दी और दोनों मित्रों को एक इमारत पे खड़ा कर दिया और उनको कहा कि आप इस इमारत से उस इमारत, इस रस्सी के ऊपर चल के जाओ। उस तरफ पहुंच गए तो सारा आपका जो दोष है माफ, अगर नहीं पहुंच पाए मेरी गलती नहीं। तो दोनों मित्र खड़े हुए, एक दूसरे को बोलते हैं, पहले आप, नहीं नहीं पहले आप, क्या वैष्णव एटिकेट, वैष्णव आचार। फिर अंत में एक ने कहा ठीक है जाना तो है ही, तो वो दो बिल्डिंग के ऊपर, समझ लीजिए 105 एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा, पीछे से एक देख रहा है, बोले बाप रे पहुंच पाएगा, कर पाएगा कि नहीं। देखते 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 आश्चर्यचकित बात यह थी कि वो पहुंच गया उस साइड। उधर पहुंचने के बाद ये जो इस तरफ खड़ा था बोला, सुनो कैसे पहुंच गए तुम, मुझे भी बताओ, मैं भी पहुंचना चाहता हूं, आज तक कभी रस्सी के नहीं, पटरी के ऊपर भी नहीं चला मैं तो, रस्सी के ऊपर, और भी बिल्डिंग इतना नीचे देख के कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, कृपया ये बताओ कि आप, तुम भी तो मेरे साथ ही थे, कैसे पहुंच गए उस तरफ। तो उस दोस्त ने कहा, मैंने सिर्फ दो चीज पर ध्यान दिया बस। बोले क्या, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुणंदन, मैं सिर्फ वो बिल्डिंग को देखा था, वहां पहुंचना है मुझे बस, मैं इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा, ऊपर नहीं नीचे नहीं, सिर्फ लक्ष्य की ओर देख रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, सिर्फ जहां पहुंचना है वही देख रहा था मैं। और दूसरी बात, रस्सी से फिसलने का नहीं, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो जब ऐसा ऐसा जाता था तो एक झटका मार के इधर आता था, फिर थोड़ा इस तरफ जा रहा हूं तो एक झटका मारा फिर इधर आया, तो इधर जाता था तो झटके मार के इधर आता था, फिर इधर जाता था, तो किसी तरह से बैलेंस करके रस्सी के ऊपर टिके रहो बस, लक्ष्य को देखते रहो, रस्सी के ऊपर टिके रहो, फिर पहुंच जाओ। लक्ष्य को देखना मतलब क्या, इधर उधर भ्रमित मत हो जाओ, माया देवी बहुत सारे गाजर लटकाएंगे आपके सामने, अरे वो छोड़ दो, इधर देखो लॉटरी लगने वाला है, इधर ही रह जाओगे गधे के समान, वहां नहीं जा पाओगे। लक्ष्य को कभी मत भूलो। भक्त के जीवन में बहुत सारी लालच आएंगी, माया बहुत लालच दिखाएगी, छोड़ दो ये सब, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो, वही समय को यहां इन्वेस्ट करो, ज्यादा मिलेगा। पर भक्त वो है जो कभी अपना लक्ष्य की ओर से अपना दृष्टिकोण नहीं हटाता। हर एक यशस्वी व्यक्ति का यही लक्षण है कि लक्ष्य पे से ध्यान नहीं हटना। इसी जीवन में मुझे भगवत धाम जाना है, क्या मालूम फिर से कब एक जोनी मद एक कोटि कोटि फेरा। तुकाराम महाराज कहते हैं 84 लाख योनी है, पर उसमें एक एक योनी में भी कोटि कोटि फेरा, एक पेड़ बन गया तो जो जो 5000 साल तो रहता है एक एक पेड़। कैलिफोर्निया में एक पेड़ है 5000 साल का पेड़ है, मतलब द्वापर के अंत में था वो, बीज डाला था किसी ने, अभी भी खड़ा हुआ है बेचारा। कभी बर्फ, कभी पानी, कभी ठंडा, कभी गर्मी, और उसमें अगर कोटी कोटि फेरा समझ लो कितने साल। तो दुर्लभ मानुष जन्म लभिया संसारे, ये दुर्लभ है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। ऐसा चला जाएगा समय, देखते देखते आंटी अंकल हो जाओगे, देखते देखते आजोबा हो जाओगे, देखते देखते तुम्हारा चित्र सिर्फ फोटो दीवार पर रह जाएगा। ऐसा चला जाता है समय, देखते देखते। तो एक एक योनि, एक एक क्षण भी, आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। समय का मूल्य को हम, समय की जो मूल्य है नहीं पहचानते हम लोग। तो सौभाग्यवश ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो एक लक्ष्य की ओर से ध्यान नहीं हटाना, और लक्ष्य की ओर ध्यान होने के लिए भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग में हम एक दूसरे को याद दिलाते ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये कर रहे हो कि नहीं, इस तरफ जा रहे हो कि नहीं। जब साथ में जाते हैं तो एक थोड़ा ठंडा हो जाता है, चल जल्दी, हम लोग जॉगिंग जाते थे पहले, अबे थक गया, चल चल चल। अगर एक ही जाएगा ना थक गया तो बोले सो जाएगा, वो उठेगा ही नहीं उठे। पर चार पांच लोग साथ में जाते तो अच्छा है, एक थक भी गया तो दूसरा खींच के ले जाएगा उसे। तो भक्तों के संग में बार बार सुनते रहेंगे कि लक्ष्य क्या है, नहीं तो हम बड़े आसानी से भ्रमित हो जाएंगे। और दूसरा चीज है बैलेंस रखना। बैलेंस रखने का मतलब क्या, शरीर है, शरीर की देखभाल करना, शरीर से सारे संबंधी हैं उनका देखभाल करना जरूरी है, पर शरीर को और उनके संबंधियों को देखभाल करना जीवन का उद्देश्य। सिंपल समझ लीजिए, आप कोल्हापुर से वृंदावन जाना चाहते हैं और आपने एक गाड़ी खरीदा फर्स्ट क्लास कार, और बोले आज हम कोल्हापुर से निकल रहे हैं जी। ऑफकोर्स सन्यासी लोग अकेले जा सकते हैं गाड़ी में, कोई तकलीफ नहीं, पर आप गृहस्थ हो तो पत्नी है, बच्चे हैं, बैगेज है, डब्बा है, बोतल है, सब कुछ है, तो गाड़ी में पेट्रोल है क्या देखना पड़ता है, पैसा लेके चलना पड़ता है, कहीं रेस्टोरेंट आया पास में तो रोकना पड़ता है, या फिर कोई क्या बोलते हैं लॉज है तो वहां रोक के रात को आराम करना पड़ता है, पत्नियों को बच्चों को जो जरूरत है खिलाना पड़ता है, गाड़ी को जरूरत है ठीक ठाक करना पड़ता है। पर क्या बच्चों को खिलाना जीवन का उद्देश्य है, क्या पेट्रोल भरना जीवन का उद्देश्य है, क्या रास्ते पे खड़ा करके होटल में सोना जीवन का उद्देश्य? नहीं, उद्देश्य है हमको वृंदावन पहुंचना, पर पहुंचने के लिए सब ठीक ठाक चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ उधर ही देखते रहे तो नहीं पहुंच पाएंगे, और सिर्फ इधर ही देखते रहे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बैलेंस है कि हमको वहां तक जाना है, और जाने के लिए जो जो जरूरत है वो सब करनी है, पर इतने करने में मग्न नहीं हो जाए कि लक्ष्य भूल जाए, और सिर्फ लक्ष्य को देख के अगर लापरवाही से ये सब छोड़ दें तो वो साधन जो है वो ही नहीं रहेगी साध्य प्राप्त करने तक। तो ये बैलेंस है। तो ये दो चीज है। नारद मुनि के जीवन आप अगर अध्ययन करेंगे, मेरा नम्र निवेदन है, चौथा पांचवां और छठा अध्याय श्रीमद् भागवतम के, ये तीन अध्याय में नारद मुनि जी के, नारद मुनि ने अपने जीवन बताया है किस तरह से वो एक बहुत ही तुच्छ नौकरानी के पुत्र से एक भगवान के नित्य पार्षद बने। अगर उसका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, और ये जानेंगे कि ये जो यात्रा है, ये सफर है, ये इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं, निश्चित रूप से परीक्षाएं आएंगी, पर ये परीक्षाएं हमको और मजबूत करेंगी अगर लक्ष्य को ध्यान रखेंगे और रास्ते से इधर उधर नहीं चले जाएंगे, बैलेंस बनाए रखना। तो इस तरह से ये दोनों चीज पे ध्यान रखेंगे तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। और ये बैलेंस रखने का तरीका क्या है, इसीलिए हमारा ये क्या बोलते हैं, एक गुरु का आश्रय और एक अनुभवी भक्तों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि हम कभी कभी हमें नहीं समझ पाता, सब रास्ता एक ही दिखता है, पर एक अनुभवी भक्त के मार्गदर्शन में चले तो हमको लगता है कि नहीं चिंता मत करो मुझे भी ऐसा होता, हमको लगता है हमारे सर के ऊपर आसमान गिर गया, बोलते नहीं नहीं हमको भी ऐसे ही लगा था, हर एक व्यक्ति को 6 महीने के बाद ऐसे ही होता है, चिंता मत करो मेरे को भी हुआ। अच्छा आपको भी हुआ था, क्या करना है प्रभु जी, ऐसा ऐसा करो बस। अच्छा जी मेरे को लगा मैं तो पूरा चला गया ऑफ ट्रैक, ऐसा लगता। कभी गाड़ी पंचर बोले पंचर होता रहता, गाड़ी जाने से होता है तो है, थोड़ा ये करो थोड़ा चक्का लगा दो दूसरा चलते बंद। तो ये जो चीज अगर ध्यान रखेंगे, भक्तों के संग में आकर श्रवण करते हुए लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, खोएंगे नहीं, और उनका पूर्ण रूप से फायदा लेकर अगर बैलेंस रखेंगे अपने जीवन में, तो हम निश्चित रूप से इसी जीवन में लक्ष्य की ओर बहुत ही तेजी से अग्रसर होकर, भगवान की कृपा हो, उनकी उनकी इच्छा हो, तो इसी जीवन में पहुंच पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की।